Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार। इस सप्ताह के प्रमुख समाचारों में, गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति को लेकर अमेरिका की नई योजना पर विचार, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्रिटिकल मिनरल समझौते पर प्रगति, और महिला व पुरुष क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रोमांचक मुकाबले। और अब साप्ताहिक समाचार विस्तार से स्वाति शर्मा के साथ। अमेरिका गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रहा है, जो विवादित अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जगह ले सकती है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, यह उन कई प्रस्तावों में से एक है जिन पर ट्रंप प्रशासन विचार कर रहा है, ताकि 2 साल के युद्ध के बाद पैलेस्टीनियन क्षेत्र में राहत सामग्री की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। सहायता संगठनों का कहना है कि गाजा में पहुंच रही मदद जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस अदानोम गेब्रियसिस ने बताया।
Is there a dent in hunger level? If the aid that's entering Gaza is significantly low, it cannot dent the hunger level. And the situation still remains catastrophic because what's entering is not enough.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इसराइल की संसद नेसेट में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को मिलाने यानी एनेक्सेशन पर हुए प्रतीकात्मक वोट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ है। नेसेट ने यह प्रस्ताव मामूली अंतर से पारित किया, जिसे कठोरपंथी सदस्यों ने आगे बढ़ाया था, जिनमें से कुछ संघर्ष विराम और उससे जुड़ी सुरक्षा रियायतों से असंतुष्ट थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बयान में कहा गया कि यह वोट विपक्ष की राजनीतिक उकसावेबाजी है। इसराइल से प्रस्थान करते समय उपराष्ट्रपति वैंस ने इस कदम को अपमानजनक बताया।
I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा है कि वे और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने क्रिटिकल मिनरल्स पर ऐतिहासिक ढांचे के तहत और भी बड़े लक्ष्यों को हासिल करने जा रहे हैं। अल्बनीजी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कई दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं, जो रक्षा और उन्नत तकनीकों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
Secondly is projects that will be US investment that the US will undertake in Australia, including processing, and then ones that Australia will undertake, some as well. One of them is Australia, the US and Japan as well.
इससे पहले दोनों देशों ने अगले 6 महीनों में $1 अरब से अधिक राशि निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑकस सुरक्षा समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां देने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चाइना के असुरक्षित सैन्य व्यवहार की आलोचना की है, जिसमें एक चीनी युद्धक विमान ने साउथ चाइना सागर में ऑस्ट्रेलियाई निगरानी विमान के पास फ्लेयर्स छोड़े। रक्षा विभाग के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई साइडन विमान रविवार को गश्त पर था, जब यह घटना हुई। विभाग ने कहा कि चीनी जेट ने बेहद नजदीक से फ्लेयर छोड़े, जिससे विमान के चालक दल को खतरा हुआ। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा कि इस घटना को कैनबेरा और बीजिंग दोनों जगह चीनी राजनयिकों के सामने उठाया गया है।
We've deemed this to be both unsafe and unprofessional. We have raised this issue with the Chinese embassy here in Canberra, and we have also made representations via our embassy in Beijing. And we will also continue to undertake activities which assert the rules-based order, because freedom of navigation in the air and on the sea is fundamental to Australia's national interests. The majority of Australia's trade goes through the South China Sea.
यह घटना एशिया के विवादित हवाई क्षेत्र और समुद्री मार्गों में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते तनाव की कड़ी में एक और उदाहरण है। न्यू साउथ वेल्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डोमिनिक टूमे ने राज्य में इस वर्ष हिरासत में 12 प्रथम राष्ट्र लोगों की मौतों पर गहरी चिंता जताई है, जो अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। उन्होंने इसे सार्वजनिक नीति की असफलता बताया और कहा कि सरकार ने रॉयल कमीशन इनटू एबोरिजिनल डेथ्स इन कस्टडी से कोई सबक नहीं सीखा है। ताजा बॉक्सार आंकड़ों के अनुसार जून 2023 से जून 2025 के बीच फर्स्ट नेशंस कैदियों की संख्या वयस्कों में 18% और बच्चों में 36% बढ़ी है। टूमे ने कहा कि हिरासत में प्रथम राष्ट्र लोगों की बढ़ती संख्या ही मौतों का मुख्य कारण है।
It's a matter of enormous concern to the Bar Association. But what we're really calling on the state government to do is to address the root causes. And that means spending money on programs rather than spending money on incarcerating First Nations people to address what sees them incarcerated in the first place.
ऑस्ट्रेलिया में घरों की कीमतें 4 वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ रही हैं। डोमेन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही में 3.4% की वृद्धि के बाद सिडनी में औसत घर की कीमत $1.75 मिलियन तक पहुंच गई है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2026 के अंत तक यह कीमत $2 मिलियन तक पहुंच सकती है। डोमेन की मुख्य अर्थशास्त्री निकोला पावल ने कहा कि सिर्फ 12 साल पहले सिडनी ने पहली बार $1 मिलियन का स्तर पार किया था और अब यह वृद्धि फिर से तेजी से जारी है।
We're expecting prices to continue to rise over spring, and particularly around that property price cap, which is set across all of the capital cities. So for Sydney, it's $1.5 million. So we are expecting price pressure to come in.
अब खबर क्रिकेट की दुनिया से। महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर एक और जीत दर्ज की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में एनाबेल सदरलैंड और एश गार्डनर ने शानदार प्रदर्शन किया। गार्डनर ने टूर्नामेंट का दूसरा शतक लगाया और 2 विकेट लिए, जबकि सदरलैंड 98 नाबाद रहीं और 3 विकेट छटके। यह महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी 5वीं विकेट की साझेदारी रही। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इस वनडे टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम पर्थ में खेले गए पहले वनडे में 7 विकेट से और एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में 2 विकेट से विजेता रही। 3 मैचों की यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती। अब दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की T20 श्रृंखला में आमने सामने होंगी। इसी के साथ इस सप्ताह की प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल समाचार सुर्खियां समाप्त होती हैं। आप अन्य खबरें और जानकारियां जब चाहें सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi, हमारी ऐप SBS ऑडियो या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।